हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अर्णव और ध्रुति दोनों ही अपने अपने कामों में लगे थे। ध्रुति के सर पर पहले ही दिन अर्णव ने इतनी जिम्मेदारी दे दी थी कि वो नजरें भी इधर उधर नहीं कर सकी। खड़े होकर काम करना आसान तो नहीं था, पर वो कर रही थी। अर्णव बीच बीच में नजर उठाकर ध्रुति को देख ले रहा था, फिर वापस काम करने लगता। ध्रुति को यूं काम में लगे देखकर और उसकी एकाग्रता देखकर अर्णव की निगाहें कई दफा उस पर ठहरी। वो उसके चेहरे पर संघर्ष और परेशानी के भाव भी बखूबी देख पा रहा था, पर फिर भी चुप था। दोनों को ही वक्त का होश में ही रहा था। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई, जिसने दोनों का ध्यान अपनी ओर खींचा। कम इन, अर्णव की आवाज में अब भी रौब झलक रहा था। उसके परमिशन मिलते ही दरवाजा खुला और माधुरी ने अंदर कदम रखा। ध्रुति उसे देखने लगी। सर, लंच टाइम हो गया है। कबीर सर पूछ रहे हैं कि लंच यहाँ आपके कैबिन में करेंगे या उनके कैबिन में। माधुरी का सवाल सुनकर अर्णव ने एक नज़र ध्रुति को देखा, फिर सख्त लहजे में बोला, उनके कैबिन में लंच होगा, यहाँ काम चल रहा है। अर्णव का इशारा ध्रुति के काम की ओर था। माधुरी ने सर हिला दिया, फिर ध्रुति को देखकर बोली, मैम आप भी चलकर लंच कर लीजिए, काम वापस आकर कर लीजिएगा। उसकी बात सुनकर ध्रुति ने सर हिला दिया। सुबह घबराहट के कारण उसने ठीक से खाया नहीं था, इसलिए अब उसे भूख लग रही थी। ध्रुति ने माधुरी की बात सुनकर जैसे ही फाइल बंद की, उसके कानों में अर्णव की सख्त आवाज पड़ी, वो आज लंच नहीं करेगी। ये सुनकर ध्रुति की हैरानगी भरी निगाहें उसकी ओर घूम गईं। अर्णव ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, आज वो पूरे 10 मिनट लेट ऑफिस आई थी और मुझे वक्त की कदर न करने वाले गैर जिम्मेदार लापरवाह लोगों से सख्त नफरत है। आज लेट से आने की इसकी सजा है कि आज इसे लंच ब्रेक नहीं मिलेगा, इसलिए ये यहीं रुककर अपना काम करेगी, और अगर दोबारा ये ऑफिस के लिए लेट हुई तो सजा इससे भी बड़ी होगी। अर्णव ने अपनी बात पूरी करते हुए चेतावनी भरी नज़रों से ध्रुति को देखा, फिर आगे बोला, और एक बात, ये लड़की मेरी वाइफ नहीं पीए है, तो ध्यान रहे कि यहाँ किसी को हमारे रिश्ते के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अर्णव की बातें सुनकर ध्रुति भावहीन सी उसे देखती रही। उसने पलटकर एक शब्द तक नहीं कहा। अर्णव ने निगाहें माधुरी की ओर घुमाते हुए भौं उचकाई तो उसने सहमति में सर हिला दिया, और एक नज़र ध्रुति को देखने के बाद मायूस सी कैबिन से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद अर्णव की घूरती निगाहें ध्रुति की ओर घूम गईं और उसने चेतावनी भरे लहजे में कहा, जा रहा हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि अब तुम मेरी नज़रों में नहीं रहोगी। इस कैबिन में कैमरे लगे हैं और मेरी नज़रें हर पल तुम पर रहने वाली हैं, इसलिए चुपचाप अपना काम करना और बैठने या आराम करने की सोचना भी मत। ध्रुति को धमकाकर अर्णव वहां से चला गया। ध्रुति की आंखों में अब हल्की नमी उतर आई। उसने अपने पेट पर हाथ रखते हुए गहरी सांस खींची और लग गई वापस काम में। कुछ देर बाद अर्णव लंच करके वापस आया, तब भी ध्रुति खड़ी फाइल पढ़ती नजर आई। अर्णव उसे देखकर तिरछा मुस्कुराया और अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। ध्रुति ने एक बार नज़र उठाकर उसे देखा तक नहीं। देखते ही देखते घड़ी ने शाम के 7 बजा दिए और धीरे धीरे सब एम्प्लॉयज ऑफिस से जाने लगे। ध्रुति की 8 फाइलें पूरी हो गई थीं, पर 2 अब भी बाकी थीं। उसने उन दोनों फाइलों को बैग में डाल लिया। अर्णव उसे छोड़ के पहले ही जा चुका था। ध्रुति भी माधुरी के साथ ऑफिस से निकल गई। गाड़ी अर्णव ने वापस भेज दी थी तो ध्रुति माधुरी के साथ कैब से घर के लिए निकल गई। रास्ते में माधुरी उसे रिपोर्ट कैसे तैयार करनी है ये बताती रही। ध्रुति घर पहुंची और अभी उसने चौखट के अंदर पहला कदम रखा ही था कि उसके कानों में अर्णव की कठोर गुस्से भरी आवाज पड़ी, इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने, कहीं ऑफिस के बाद अपने किसी आशिक से मिलने तो नहीं पहुंच गई थी तुम। असल में ध्रुति तो घर आते आते 8 बज गए थे, इसलिए अर्णव गुस्से से फायर हो रहा था। ध्रुति के कानों में अर्णव के शब्द पड़े तो उसके आगे बढ़ते कदम ठिठक गए। सब नौकरों के सामने अर्णव का ऐसा सवाल करना और उस पर ऐसा इल्ज़ाम लगाना ध्रुति को सबके सामने शर्मिंदा कर गया। चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। उसने ठंडी आह भरी और दर्द भरे लहजे में बोली, मेरा कोई आशिक नहीं और ना ही पहले कभी था, इसलिए ऐसा बेबुनियाद इल्ज़ाम दोबारा मत लगाइएगा मुझ पर। मुझे देर हुई क्योंकि रास्ते में बहुत ट्रैफिक था और मैं माधुरी के साथ आई हूँ, इसलिए अगर आपको लग रहा हो कि मैं झूठ कह रही हूँ तो उससे पूछ लीजिए, उस पर तो भरोसा होगा ना आपको, तो वो बता देगी आपको कि मैं उसके साथ ही ऑफिस से निकली थी और वही यहाँ तक मुझे छोड़कर गई है, और एक बात, अगर विश्वास नहीं मुझ पर तो लगा दीजिए मुझ पर पहरेदारी जो मेरे पल पल की खबर आपको देता रहे। कम से कम तब आपको इतना तो पता चलेगा कि मेरा आपके अलावा किसी लड़के से कोई संबंध नहीं और आप जो इल्ज़ाम मुझ पर लगाते हैं वो सरासर झूठ है। धृति ने अपनी बात कही और सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। सोफे पर बैठा अर्णव बस उसे घूरता ही रह गया। धृति ने अभी पहली सीढ़ी पर कदम रखा ही था कि एक बार फिर अर्णव की सख्त आवाज़ उसके कानों से टकराई। वहाँ कहाँ चली तुम? मेरी कॉफ़ी कौन लाकर देगा और खाना कौन बनाएगा? धृति के आगे बढ़ते कदम ठिठक गए। उसने गहरी सांस छोड़ी और किचन की ओर चली आई। उसने अपना बैग साइड में रखा और दुपट्टे को कंधे से तिरछा लेकर कमर पर बांधते हुए काम में लग गई। 5 मिनट के अंदर अर्णव को उसने उसकी कॉफ़ी बनाकर दे दी और डिनर की तैयारी करने लगी। अर्णव के ऑर्डर के मुताबिक सब काम उसे खुद ही करना था, पर अब उसकी हालत खराब होने लगी थी। सुबह के बाद से अन्न का एक दाना भी उसके पेट में नहीं गया था। उस पर सारा दिन खड़ी रही थी, जिस वजह से पैर बुरी तरह दर्द करने लगे थे। धृति ने जैसे तैसे डिनर तैयार किया और फिर रूम में पहुंची तो अर्णव बड़े ही शौक से बेड पर पसरकर फ़ोन चला रहा था। अर्णव ने नज़र उठाकर धृति को देखा, जिसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, फिर निगाहें फेर लीं। धृति ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। धृति को जोरों की भूख लगी थी। उसने पहला निवाला तोड़कर मुंह में डालने के लिए उठाया ही था कि अर्णव ने उसकी प्लेट उठाकर जमीन पर पटक दी और गुस्से से चीखा, जब मैं नहीं खा रहा तो तुम कैसे खाना खा सकती हो? यही पत्नी धर्म है तुम्हारा कि पति भूखा बैठा है और तुम अपना पेट भरने में लगी हो? बेचारी धृति, वो निवाला तक नहीं खा सकी और आंखें बड़ी बड़ी करके अर्णव को देखने लगी। वो समझ ही नहीं सकी थी कि आखिर अब अर्णव किस बात का गुस्सा उतार रहा है उस पर। अर्णव ने धृति के चेहरे पर उलझन भरे भाव देखे तो सब्जी का बाउल जमीन पर पटकते हुए गरजा, ये क्या सब्जी बनाई है तुमने? इतने दिनों में तुम्हें इतना पता नहीं चला कि तुम्हारे पति को क्या पसंद है और क्या नहीं? जाओ अभी जाकर दूसरी सब्जी बनाकर लाओ। धृति की हालत पहले ही खराब थी, पर अर्णव ने उस पर जरा भी तरस नहीं खाया। धृति ने नीचे जमीन पर बिखरी कटहल की सब्जी को देखा जो उसने बड़े ही शौक से बनाई थी क्योंकि उसे बहुत पसंद थी, फिर दर्द भरी आह छोड़ते हुए सब्जी उठाने के लिए नीचे बैठ गई। इस वक्त उसके चेहरे पर गहरी उदासी, दर्द और बेबसी झलक रही थी। अर्णव के कारण वो एक निवाला तक नहीं खा सकी थी, पर उसने पलटकर कुछ कहा भी नहीं। उसे चुपचाप फ्लोर साफ करने के बाद किचन में चली आई। कुछ देर बाद वो दूसरी सब्जी बनाकर लाई। पनीर बनाई थी उसने, जो अर्णव को तो पसंद थी पर धृति को पसंद नहीं थी। अर्णव ने तो भरपेट खाना खाया, पर सुबह की भूखी धृति दो रोटियां खाकर ही खाने पर से उठ गई और कमरे में चली आई। कुछ देर बाद अर्णव कमरे में पहुंचा तो कमरा बिल्कुल खाली था। अर्णव ने कुछ सोचते हुए ग्लास विंडो का पर्दा साइड करके पूल साइड देखा तो काउच पर बैठी धृति अपने पैरों में तेल लगा रही थी। धृति ने तेल लगाकर अपने पैरों की हल्की मालिश की, फिर हाथ धोकर वापस काम में लग गई। घड़ी की टिक-टिकते बीच अर्णव वहां खामोश खड़ा धृति को देखता रहा। आधी रात गए धृति ने अपना काम किया, फिर वहीं सोने के लिए लेट गई। अर्णव भी आकर बेड पर लेट गया। अगली सुबह जब वो उठा तो धृति कमरे में नहीं थी। उसके कपड़े से लेकर जरूरत का सब सामान सलीके से टेबल पर रखा था। अर्णव पहले जिम में गया, फिर नहाकर तैयार होकर नीचे पहुंचा तो डाइनिंग टेबल पर खाना लगा था, पर धृति वहां नहीं थी। अर्णव ने आसपास निगाहें घुमाई, फिर शीला को देखकर सवाल किया, तुम्हारी मैडम कहाँ है? सर, मैडम कह रही थीं कि उन्हें कुछ काम था इसलिए आज जल्दी ऑफिस चली गई हैं, ड्राइवर के साथ गई हैं, तो आप फ़ोन करके उनसे पूछ सकते हैं कि मैडम कहाँ गई हैं। धृति ने अर्णव के शक का इलाज भी कर दिया था, पर उसकी ये बात अर्णव को कुछ खास पसंद नहीं आई थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और आंखों में नाराज़गी झलकने लगी थी। अर्णव ने खाने को हाथ तक नहीं लगाया और अपना लैपटॉप बैग और कार की चाबी लेकर बाहर निकल गया। धृति आज टाइम से पहले ऑफिस पहुंच गई थी। माधुरी से बात करवाने पर उसे एंट्री मिल गई थी। ऑफिस की साफ सफाई करने वाला स्टाफ आ चुका था और वो अपने काम में लगे थे। धृति इस वक्त प्रिंटिंग एरिया में खड़ी अपनी बनाई रिपोर्ट का प्रिंटआउट निकाल रही थी। तभी अचानक किसी ने उसकी बांह पकड़कर उसे कोने में खींच लिया, जिससे धृति चौंक गई। पर जब तक वो संभल पाती या खुद को बचा पाती, उस शख्स ने उसे दीवार से सटा दिया और उसकी दोनों कलाइयों को जकड़ते हुए उसके हाथ को ऊपर करके दीवार से चिपका दिया। घबराहट के मारे धृति की सांसें थम गई थीं। वो बुरी तरह डर गई थी, पर जब उसने सामने खड़े अर्णव को देखा तब कहीं जाकर उसे कुछ राहत महसूस हुई। अर्नव ने उसे बिल्कुल दीवार से चिपका दिया और गुस्से से धधकती निगाहों से उसे घूरते हुए दांत पीसते हुए बोला, क्या कर रही हो तुम सुबह सुबह यहाँ? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे बिना बताए घर से बाहर कदम रखने की? क्या सोचकर तुम खाने के लिए बिना मेरा इंतजार करे यहाँ चली आई? अर्नव ने गुस्से में धृति की कलाइयों को कुछ ज्यादा ही सख्ती से दबा दिया था, जिससे उसकी कलाइयों में तेज दर्द होने लगा। धृति अर्नव को सामने देखकर चौंक गई थी, फिर उसका गुस्सा देखकर सहम गई। पर जब उसने अर्नव की बातें सुनी तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने अर्नव की पकड़ से अपनी कलाइयों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, मैं प्रिंटआउट निकालने जल्दी आई थी ताकि आपका काम वक्त पर पूरा कर सकूं। आपके सब काम करके आई थी मैं। शीला को बता भी दिया था कि मैं ऑफिस आ रही हूं, और अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं तो अपने ड्राइवर से पूछ लीजिए कि घर से मैं सीधे यहां आई हूं या नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब किस बात पर आप इतना भड़क रहे हैं। आपने कहा था मुझे कि एक पत्नी का फ़र्ज़ निभाते हुए मुझे आपके सब काम करने होंगे, तो मैंने सब किया था। आपने पहले ये नहीं कहा था मुझे आपके साथ बैठकर खाना खाना भी होगा, या आपसे पहले मैं घर से बाहर कदम नहीं रख सकती, इसलिए अब इसके लिए आप मुझे टॉर्चर नहीं कर सकते। धृति की बात सुनकर भी अर्नव के भाव जरा भी नहीं बदले। धृति को छोड़ने के बजाय उसने उसकी कलाई को थामे हुए उसकी बांह को मरोड़कर उसकी पीठ से चिपकाते हुए धृति को अपने करीब कर लिया और धधकती निगाहों से उसे घूरते हुए बोला, मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं ये मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है, और ना ही मैं कुछ भी तुम्हारे हिसाब से करने वाला हूँ। उल्टा तुम्हें अपनी जिंदगी मेरे हिसाब से जीनी है। मेरी इजाज़त के बिना तुम्हें सांस लेने तक की भी इजाज़त नहीं है, ये याद रखना। पत्नी हो तुम मेरी, और एक अच्छी पत्नी की तरह तुम्हें मेरा हर काम करना है, मेरा ध्यान रखना है। जब तक मैं नहीं खा लेता तुम्हें खाने की इजाज़त नहीं है। मेरी परमिशन के बिना तुम्हें घर से एक कदम भी बाहर निकालने की इजाज़त नहीं है। ये बातें अपने दिलो दिमाग में अच्छे से बिठा लो, क्योंकि आज तो इसे तुम्हारी पहली गलती समझकर माफ़ कर रहा हूँ, पर अगली बार माफ़ी नहीं सज़ा मिलेगी तुम्हें। तुम क्या और कैसे मैनेज करोगी मुझे नहीं पता, पर मैं तुम्हारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं, इसलिए आज वाली हरकत दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। अर्नव ने चेतावनी भरी निगाहों से उसे घूरा और झटके से धृति को खुद से दूर झटक दिया। दर्द से धृति की आंखों में आंसू आ गए थे, और इतनी देर से वो खुद को किसी तरह संभाले हुए थी, पर अब वो खुद को नहीं संभाल सकी। उसने अपनी कलाइयों को देखा जिस पर अर्नव की उंगलियों के निशान छप चुके थे, और कलाई एकदम लाल हो गई थी। धृति अपनी कलाई को पकड़कर सहलाने लगी और उसकी आंखों में ठहरे आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। एक बार फिर बेवजह उसके हिस्से अर्नव का गुस्सा, बेरुखी और ये दर्द आया था। अर्नव, जिसका चेहरा अब भी गुस्से से भरा था, उसकी नज़र धृति की लाल कलाइयों और गालों पर ठहरे आंसू की बूंदों पर पड़ी तो उसके चेहरे के भाव कुछ कोमल हो गए। पहले तो बेख्याली में उसके कदम धृति की ओर बढ़े, पर अगले ही पल उसने नफ़रत से उस पर से निगाहें फेर लीं और गुस्से में लंबे लंबे डग भरते हुए वहां से अपने कैबिन की ओर चला गया। धृति ने अपने आंसू पोछे और थोड़ा आगे आई तो वहां ऑफिस का एक लड़का खड़ा था, और उसके शॉक्ड से चेहरे को देखकर धृति समझ गई कि उसने कुछ तो देख लिया है। पर धृति ने उसे अनदेखा करते हुए अपने प्रिंट्स लिए और अर्नव के कैबिन की ओर बढ़ गई।